हरे कृष्णा। सवेरे हम नंदगांव में पावन सरोवर गए थे। तो पावन सरोवर का पहला नाम नंद सरोवर था। नंद महाराज का वो प्राइवेट कुंड था जहाँ पे वो स्नान करते थे। तो एक दिन यशोदा माई जो है वो मटरी बना रही थी। मटरी जानते हैं मटरी क्या होती है? सूखा आइटम होता है, नमकीन आइटम जो सफ़र में जाने के लिए बनता है। तो कन्हैया ने पूछा, मैया क्या बन रहा है? तो बोलते मटरी बन रही है। बोला क्यों बन रही है? बाबा यात्रा करने जा रहे हैं। कहाँ यात्रा करने जा रहे हैं? प्रयागराज त्रिवेणी संगम में यात्रा करने जा रहे हैं। बोला अच्छा, तो उनको बाबा ब्रज छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बाबा को गाके कहा, बाबा आप ऐसा मत करो, आप आज के बदले में कल जाओ, कल अक्षय तृतीया है, अच्छा दिन है, इस दिन यात्रा करना भी सफल है, मुहूर्त भी अच्छा है। तो बाबा को अच्छी बात लगी, भाई ठीक है, वेरी गुड, आज के बदले में कल जाने में कोई नुकसान नहीं है। तो उस रात को नंदगांव में रुके, सुबह उठे, रोज़ वो भोर में उठते थे और अपने कुंड में स्नान करते थे। तो वैसे ही कुंड में गए स्नान करने के लिए, तो अंधेरे समय में उनको बहुत बड़ा प्रकाश दिखाई पड़ा उधर। तो प्रकाश की ओर देखा तो क्या देखा, प्रकाश एक व्यक्ति के शरीर से आ रहा है। फिर गौर से देखा तो क्या देखा, व्यक्ति राजा है, वो राज मुकुट पहना हुआ है, राजवस्त्र पहना हुआ है, अलंकार पहने हुए हैं, और कर क्या रहा है वो, नंद सरोवर में स्नान कर रहा है। वो भी ठीक है, लेकिन आगे जो कर रहा है वो बहुत आश्चर्यकारक है। स्नान कर रहा है और फिर नदी किनारे, वो कुंड किनारे आकर लोटपोट हो रहा है, वो रोलिंग इन द डस्ट, वो फिर स्नान कर रहा है, फिर तल पे आके लरज में अपने आप को लोटपोट कर रहा है, फिर स्नान कर रहा है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति मेरे राज्य में कहने के देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। उनके पास में के बोले, महाराज जी आप कौन हो? तो वो जो तेज पुंज व्यक्ति थे, मोटे चौड़े मुकुटधारी, वो कहते हैं मैं प्रयागराज हूँ। तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं। बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि साल भर हमारी सेवा है, दुनिया के लोग स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, सब पाप जमा हो जाता है, तो अक्षय तृतीया के दिन हम अपना धाम छोड़ के नंद सरोवर में आके स्नान करते हैं, सारा पाप धो देते हैं। नंद महाराज ने वही निश्चय किया कि अभी हम त्रिवेणी नहीं जाएंगे, क्योंकि त्रिवेणी स्वयं यहाँ पर आकर स्नान कर रहे हैं। तो कुंड के उस किनारे देखते हैं तो बहुत सारी युवतियाँ सुंदर सुंदर स्नान करती रहती हैं। उनको जाके पूछते हैं कि आप कौन हो? तो एक कहते हैं मैं गंगा हूँ, एक यमुना हूँ, सरस्वती हूँ, नर्मदा हूँ, कावेरी हूँ, चरयू हूँ, गोदावरी हूँ। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले साल भर में हमारी नदी के जल में सब लोग आके स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ते हैं, हमारा पाप का राशि बढ़ जाता है, अक्षय तृतीया के दिन हम लोग यहाँ पर आकर सब स्नान करते हैं और पाप से मुक्त हो जाते हैं, और फिर अगले सारे दिन हम लोग वहाँ पर सेवा करने के लिए चले जाते हैं। तो नंद बाबा ने फिर जाना कैंसिल कर दिया। उस दिन से इसका नाम क्या पड़ा? पावन सरोवर। जो सारे धाम वहाँ पर आकर स्नान करके अपने को शुद्ध करते हैं वो है पावन सरोवर। तो पावन सरोवर इतना विशाल है, नंबर वन तो कृष्ण के फ्रेंडशिप की जो लीला है ना, साक्षी लीला बोलते हैं उसको, दोस्तों के संग जो लीला करते हैं, उसका उनका फेवरेट स्थान जो है वो गोवर्धन में है, उसका नाम ग्वाल पोखरा है। और नंबर टू का फेवरेट स्थान जो है वो पावन सरोवर है। भगवान वहाँ लीला करना पसंद करते हैं। ठीक है, बैटरी डाउन हो रही है, चार्ज कर रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि राधा रानी को उसकी जो मतलब राधा रानी को यशोदा मैया ने बोला कि इनको रोज हमारे पास कृष्ण भगवान के लिए भोजन करने के लिए भेजा करो। उसकी कथा ऐसी है कि दुर्वासा मुनि आए थे बरसाने में और उन्होंने राधा रानी को वरदान दिया था कि इनके हाथ का जो खाना बनेगा वो अमृत जैसा स्वाद होगा उसके अंदर, और जो भी खाएगा वो रोग से मुक्त होगा, हमेशा विजयी रहेगा। तब से यशोदा के मन में बात थी कि मेरे कन्हैया के लिए इसके हाथ से खाना बनना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने आके कीर्ति मैया को विनती किया कि आप हमारे कन्हैया के लिए इनको भेज दो खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने हाँ कर दिया और फिर वो जाने लगी वहाँ पर। तो पावन सरोवर के किनारे में यशोदा माई ने उसके लिए कुआं खोदा मीठे जल का, और उस जल से पावन सरोवर के किनारे में राधा रानी हर रोज कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी बरसाने से आकर। उस पावन सरोवर में एक छोटा हिस्सा है, उसका नाम है यशोदा घाट। जहाँ पर यशोदा जी प्राइवेटली स्नान किया करती थी। पावन सरोवर के किनारे में वल्लभाचार्य जी ने भजन किया है, उनकी बैठक भी वहाँ पर है। और वल्लभाचार्य की बैठक के आगे चैतन्य महाप्रभु की बैठक भी है, वहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु ने आकर स्नान किया है। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे तो वो काम्यवन से नंदगांव आए, और नंदगांव आके पहले उन्होंने पावन सरोवर में स्नान किया और वहाँ बैठ के भजन किया, कीर्तन किया। उसके बाद वो नंद भवन पे गए और उन्होंने यशोदा देवी और कन्हैया का मूर्ति को प्रकट किया। वो तो गुफा में गुप्त थे तो महाप्रभु जी ने उनको प्रकट किया। और पावन सरोवर में गाय के जल पिलाने की व्यवस्था का भी एक स्थान है उधर, जहाँ पर गाय आके जल पीते हैं। कृष्ण भगवान की गाय पर आके भी जल पीते थे पावन सरोवर में। कृष्ण भगवान रोज सखाओं को लेकर कूदते थे, स्नान करते थे, जल के लिए यानी पानी की खेल खेलते थे। तो पावन सरोवर की कथा जो है ना, इसमें से वृंदावन की महिमा सामने आती है कि वृंदावन में सारे तीर्थों ने और धाम ने आश्रय लिया है। इसके अनंत कथाएं अभी क्या क्या बताएं आपको, लेकिन एक बार नंद बाबा बोले कि हम जा रहे हैं, तो कन्हैया ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हम बद्रीनाथ जा रहे हैं चार धाम की यात्रा करने के लिए। तो क्यों जा रहे हैं, फिर दुख हुआ उनको, तो कह रहे जब तू नहीं हुआ था तो तेरे होने के लिए हमने मन्नत मांगी थी कि आप जब लड़का होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, तो जब तू होके बड़ा भी हो गया तो अब हमारा मन्नत पूरा करना चाहिए, इसलिए हम अभी बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो कन्हैया ने बोला आँख बंद करो, सबने आँख बंद कर दिया। अभी बोला आँख खोलो, जब आँख खोला तो ब्रजभूमि में नर नारायण ऋषि का जो बद्रीनाथ का पहाड़ है वो प्रकट हो गया, केदारनाथ प्रकट हो गया, गंगोत्री प्रकट हो गया, जमुनोत्री प्रकट हो गया, हर की पेड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश प्रकट हो गया। तो सब लोग तो दंग रह गए, तुरंत कपड़े उतार के उन्होंने स्नान किया, सब जल में स्नान किया, हर की पेड़ी में स्नान किया, गंगोत्री जमुनोत्री स्नान किया, अलकनंदा में स्नान किया और धन्य हो गए। तब से काम्य वन में आज भी आदि बद्री और केदार का दर्शन है, उन्होंने वहाँ पर आश्रय लिया है। गोपियों की इच्छा के लिए उन्होंने कोशी में द्वारका प्रकट किया है, रत्नाकरण समुद्र और गोमती नदी को प्रकट किया है, द्वारका धाम प्रकट किया है। काम्यवन विमल कुंड में 84,000 तीर्थों ने आश्रय लिया है। गोवर्धन में राधा कुंड में 68,000 तीर्थों ने आश्रय लिया है। कल हम जाएंगे वहाँ पर पेठा गांव में, वहाँ पर क्षीर सागर को प्रकट किया है। इस तरह से तमाम जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सब लोग वृंदावन में आश्रय ले चुके, क्योंकि वो स्वयं व्यक्ति हैं और धाम के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, और वो व्यक्ति भी भगवान के भक्त होने के कारण धाम का आश्रय लेते हैं। क्योंकि सब धाम का राजा प्रयागराज है, लेकिन ये सब धाम तीर्थ तो दुनिया के हैं, वृंदावन तो भगवान का घर है, सर्वोच्च धाम है ये, तो खुद के शुद्धि के लिए ये सारे धाम वृंदावन में आकर आश्रय लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि वृंदावन में आने के बाद में और कोई तीर्थ स्नान करने की आवश्यकता रहती नहीं है। आप जा सकते हैं, जाने में कोई पाप नहीं है, लेकिन नो नीड टू गो, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में सारे तीर्थों को जाने का लाभ प्राप्त होता है। आपने अभी हमने आपको बहुत चलाया, यहाँ से वहाँ भगाया, तो हर कदम पे आपको यहाँ पर, हर कदम आप जब चलते हो यहाँ पर, तो विश्व के सारे तीर्थों का दर्शन करने का लाभ मिलता है श्री वृंदावन धाम में। ऐसा अलौकिक धाम है ये, सारे धामों के धाम भी यहाँ पर आकर आश्रय लेते हैं और अपने उद्धार का विचार करते हैं। जिनके सहारे हम लोग अपने उद्धार का विचार करते हैं, वो स्वयं आकर वृंदावन धाम में अपने उद्धार की विचार करते हैं। ऐसा ये दिव्य धाम है, इसकी महिमा अगाध है, तो वृंदावन धाम की महिमा जो है वो अगाध है। काम्यवन में और भी एक लीला हुई है, सुनाई पड़ रहा है ना? एक बार गोपियाँ बोली काम्यवन में कि हमने सुना है कि तुम पिछले जन्म में राम थे, तो भगवान कहते नहीं नहीं मैं तो यहाँ का ग्वाल बाल हूँ, मैं कहाँ राम वगैरह, वो तो भगवान थे, मैं तो ग्वाल बाल हूँ। तो राधा रानी बोलते देखो ज़्यादा नाटक मत करो, हमने सुना है, और अगर आप राम थे तो आपको रूप दिखाना होगा आपका, नहीं तो आपसे हम बात नहीं करेंगे। ये धमकी देते ही तुरंत वो मान जाते हैं, सबको बोलते हैं आँख बंद करो, तो आँख बंद कर देते हैं। जैसे आँख खोलते हैं तो कृष्ण भगवान ब्लू रंग के वजह से हरे रंग के हो जाते हैं, हाथ में धनुष बाण और राम का रूप में दर्शन देते हैं, जटाधारी बलराम जी भैया जो है वो लक्ष्मण बन जाते हैं, सारे ग्वाल बाल जो है वो बंदर बने दिखाई पड़ते हैं। अचानक सागर प्रकट हो जाता है, उसके किनारे बैठते हैं और शिवलिंग को स्थापन करते हैं, रामेश्वर प्रकट करते हैं, रामेश्वर की पूजा करते हैं, और सबके आंखों के सामने कुछ ही मिनटों में सब बंदर पत्थर रखे समुद्र में सेतु बनाते हैं, उस पर चलकर उस तरफ जाते हैं। लास्ट में जब पहुंचते हैं तो वहां श्रीलंका प्रकट हो जाती है, वहां से रावण प्रकट होता है, राम बाण निकालते हैं रावण को मार देते हैं, और सब गोपियां देख रही हैं लीला का। उसके बाद आवाज आती है आकाश में, आंख बंद करो, तो आंख बंद करते हैं, फिर आवाज आती है आंख खोलो, तो आंख खोल देते हैं, तो दोबारा कृष्ण बलराम और सब ग्वाल बाल आके गोपियों को मिलते हैं, लेकिन समुद्र सेतु रामेश्वर श्रीलंका वहीं रहते हैं। आज भी आप जा सकते हैं और कामे वन में रामेश्वर सेतु बंद लंका का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार में वराह पुराण में आदि वराह भगवान ने सारे तीर्थों का वर्णन किया है लीलाओं के साथ, कि कैसे सारे तीर्थ जो है वह आश्रय लिए हुए हैं। तो ये भूमि जो है ना, ये इसका महात्म्य समझना कठिन है, और केवल राधा रानी की कृपा से हम लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
मायापुर धाम भी इससे कम है?
नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मधु पंडित नाम के भक्त थे, मधु पंडित महाशय नाम था उनका, उनको मधु गोस्वामी भी कहते थे। तो मधु गोस्वामी वृंदावन में आए और वो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जंगल में दौड़ते थे, वो भाव विभोर होकर कोथाए कोथाए कृष्णा करके वो भागते थे, जंगल में घूमे इधर घूमे उधर घूमे, फिर दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वो यमुना किनारे आए बंसीवट के पास, और वो कोथाए कृष्णा पुकारते पुकारते यमुना जी में गिर गए स्ट्रेट और डूबने लगे। तो यमुना जी में डूबते हुए कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उसको उठाकर बाहर लेके आए, और वो चरणों में गिर गए भगवान के। तो गोपीनाथ जी प्रकट होकर बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? तो कहते, यही मेरे साथ तुम विग्रह के रूप में रहो। तो फिर वो चलते फूरते भगवान जो थे बात करने वाले, वो विग्रह बन गए, और मधु पंडित ने उनका सेवा किया। इस प्रकार से वृंदावन धाम में राधा गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए। इसका मैंने क्या बताया था, इनका कौन सा कृष्ण जैसा है? मुख कमल, मुख कमल जो है वो कृष्ण जैसा है, तो वो गोपीनाथ का दर्शन है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि यथावकाश जब औरंगजेब का हमला हुआ तो सभी विग्रह यहाँ से चले गए, राधा रमन जी यही रहे, क्योंकि वो छोटे से थे, उनको बिस्तर में छुपाया गया, इसलिए वो यही रहे। इसलिए ओरिजिनल राधा रमन की मूर्ति यहाँ पर है, लेकिन गोपीनाथ जी मदन मोहन जी गोविंद जी ये सब जयपुर में हैं, उनकी प्रतिभू मूर्ति जो है उनका स्थान पर रखी गई मूर्ति को क्या कहते हैं, प्रतिभू मूर्ति कहते हैं। उसके अंदर भी वही शक्ति होती है जो ओरिजिनल मूर्ति में होती है, लेकिन जो मूल मूर्ति है मदन मोहन जी की गोपीनाथ जी की और गोविंद जी की, ये सभी जयपुर में विराजमान है। और भी विग्रह हैं, राधा विनोदी लाल हैं, फिर राधा श्याम सुंदर हैं, फिर राधा दामोदर हैं, दामोदर जी ओरिजिनल यहाँ पर है, श्याम सुंदर ओरिजिनल है। तो बाकी मेन विग्रह सब जयपुर में है। तो इसलिए अभी हम मंदिर जाएंगे तो हमको वहाँ पर उनके जगह पर रखी हुई मूर्ति दिखाई मिलेगी, और मधुपंडित के समाधि भी उसी मंदिर में है। और राधा गोपीनाथ मंदिर जो है वो प्रयोजन विग्रह हैं, यानी कि सेवा में परिपूर्णता देने वाले विग्रह हैं। तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे कि हम जो सेवा कर रहे हैं, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें परिपूर्णता लाने के लिए आप कृपा कर देना, ये प्रार्थना हम करेंगे। तो श्री राधा गोपीनाथ भगवान की
जय।
प्रत्येक भक्ता करता भगवंत निर्णय रूप प्रकट होता, एकच भगवंत है, अनंत रूप, अनंत रूप सगळ्यात मेन। बाके बिहारी निधिवन में प्रकट हो गए हरिदास स्वामी के लिए, राधा वल्लभ जी हरिवंश महाराज के लिए प्रकट हो गए, मदन मोहन जी सनातन के लिए प्रकट हो गए, रूप गोस्वामी के लिए गोविंद जी प्रकट हो गए, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। भगवान बहुत व्यक्तिगत हैं, इसका मतलब एक ही है, भगवान बहुत पर्सनल है, सबके साथ में इंडिविजुअल लीला करते हो सबके लिए। यहाँ पर देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए पत्थर से प्रकट हो गए, वो वो भाव के लिए रिस्पॉन्ड देते हैं। अभी वो ढूंढ रहे हैं भगवान को, कुथा है कृष्णा, कुथा है कृष्णा, नदी में गिर गए भी होश नहीं उनको, तो भाव के लिए प्रकट हो गए वो और स्थापित हो गया पर। तो हर एक विग्रह को क्या बताता है, एक एक भक्त का गौरव सुनाता है वो। हर एक विग्रह के पीछे एक भक्ति की कहानी है कि ये जो है इस भक्त के लिए आए, ये इस भक्त के लिए आए। तो वो अलग अलग रूप में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर एक भक्त के भाव को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं वो, और उनको देखकर हमको उस भक्त की याद आती है। देखो इस भक्त के लिए गोपीनाथ आ गए, इसके लिए बाकी बिहारी आ गए, इसके लिए राधा वल्लभ जी आ गए, इसके लिए मदन मोहन जी आ गए। तो भगवान अपने अलग अलग रूपों में अपने भक्त का गौरव प्रकट करते हैं, उनको देखकर उस भक्त की याद आती है। राधा रानी को देखा तो गोपाल भट्ट की याद आती है कि गोपाल भट्ट जी ने इनको प्रकट किया है, इतने सुंदर विग्रह प्रकट किए। भगवान बहुत पर्सनल है, पत्थर या प्रतिमा या फोटोग्राफ नहीं है, व्यक्ति है वो, स्वयं साक्षात हैं। जो शुद्ध चित्त का व्यक्ति होता है, चरित्र शुद्ध होता है, उसके लिए साक्षात है वो, उसके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन भजन होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। हमारा आसक्ति दुनिया में लगा हुआ है, पैसे में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, तो प्रकट नहीं होंगे वो। जब अनन्य भाव से हमने मन लगाते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, और ये लीला चलती रहती है। आपके लिए भी विशेष है वो, आपके भाव को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए हम लोग उनको पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।